स्वागत है। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है आत्मावलोकन का सरल उपाय, एकांतवास। ये जो स्रोत है हमारे पास, ये बताते हैं कि कैसे अपने बिखरे हुए जीवन को अनुशासित किया जाए, उद्देश्यपूर्ण बनाया जाए, और इसमें एकांतवास की क्या भूमिका है। तो चलिए जरा इसमें उतरते हैं। हाँ, तो हमारा लक्ष्य यही समझना है कि पूज्य गुरुदेव के विचारों से कि ये जो आजकल की भागदौड़ है, जीवन दिशाहीन सा लगता है कई बार, वहां ये एकांतवास, ये आत्मानुशासन, ये कैसे हमें रास्ता दिखा सकता है। गुरुदेव कहते भी हैं कि हम अक्सर अपनी अपनी ही क्षमताओं को नहीं जानते। शुरुआत वो करते हैं एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत शक्तिशाली विचार से, जीभ का अनुशासन। उन्होंने गांधी जी का भी उदाहरण दिया है ना, कि गांधी जी ने भी सप्त महाव्रत में पहला अध्याय अस्वाद पे लिखा। तो ये सिर्फ खाने पीने के संयम की बात है या इसका कोई गहना मतलब है?
नहीं, बिल्कुल। ये सिर्फ सात्विक भोजन या शारीरिक स्वास्थ्य तक नहीं है। पूज्य गुरुदेव इसे इंद्रिय निग्रह का मन पर काबू पाने का पहला कदम मानते हैं। उनका कहना है कि अगर जीभ असंयमित है तो वो सिर्फ गलत खान पान की तरफ ही नहीं ले जाती, बल्कि मस्तिष्क को भी मतलब उच्छृंखल बनाती है, और तो और ब्रह्मचर्य पालन में भी एक बड़ी बाधा है। तो ये एक तरह से अनुशासन का पहला पाठ है जो बाकी सब पर नियंत्रण का आधार बनता है।
अच्छा, मतलब ये साधना सिर्फ पेट की नहीं, मन की साधना हुई। इसके बाद फिर गुरुदेव आत्म मूल्यांकन पर आते हैं। कहते हैं, हम दुनिया भर की चिंता में लगे रहते हैं, बेटा बेटी दुकान ही वो, पर अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं निकालते। ये बात तो सोचने वाली है कि हम अपनी ही कीमत नहीं समझते।
सही कहा आपने। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा ने हर एक में मतलब अद्भुत क्षमताएं दी हैं। अगर हम उन्हें पहचाने, सही दिशा दें, तो कोई भी कबीर बन सकता है, नानक बन सकता है, विवेकानंद दयानंद बन सकता है। दिक्कत पैसे या साधनों की नहीं है, अक्सर दिक्कत है हमारे मन संस्थान की, मतलब हमारी जो सोचने की प्रणाली है वो कमजोर है या दिशाहीन है। हम बाहर इतना उलझ गए हैं कि अंदर झांकते ही नहीं।
और यहीं पे फिर एकांतवास आता है ना। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या सबको छोड़कर कहीं गुफा में बैठ जाना आज के समय में ये कितना प्रैक्टिकल है?
देखिए, गुरुदेव का मतलब सिर्फ भौतिक एकांत से ही नहीं है, हालांकि वो भी मदद करता है। जैसे पहले संत जाते थे गुफाओं में, या उन्होंने इलाहाबाद के कल्प साधना शिविरों का उदाहरण दिया है, जहां लोग कुछ समय के लिए दुनिया से कट जाते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। ये बाहरी शोर से मन को हटाना है, पर असली एकांतवास है मोह से, दुनिया की खींचतान से, एक मानसिक दूरी बनाना। ये महसूस करना कि भई हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। ये एक मौका है खुद पर विचार करने का, बिना बाहरी दबाव के।
मानसिक एकांत, ये गहरा विचार है। गुरुदेव तो बड़े रोचक अनुभव करने को भी कहते हैं। एक तो कि एक महीने के लिए ऐसा महसूस करो जैसे माता जी के पेट में भ्रूण हो, आध्यात्मिक पुनर्जन्म के लिए। और दूसरा, गुरुजी के अवे में मतलब कुम्हार की भट्टी में कच्चे बर्तन की तरह पकने बैठो। इसका क्या मतलब हुआ?
हाँ, ये पकना ही असल में संयम और अनुशासन का अभ्यास है। गुरुदेव चार तरह के तप बताते हैं, या कह लीजिए संयम। पहला है धन का संयम, मतलब फिजूल खर्ची रोको, पैसे को अच्छे काम में लगाओ। दूसरा है समय का संयम, जीवन में अनुशासन लाओ, टाल मटोल बंद करो। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, विचारों का संयम। खासकर वो कहते हैं नारी के प्रति अपनी दृष्टि को पवित्र रखो, उसे बेटी बहन माँ या सहकर्मी की तरह देखो। गुरुदेव कहते हैं इससे आंखों का तेज और मानसिक ऊर्जा बचती है। और चौथा है व्यवहार का संयम। ये चारों मिलकर ही व्यक्ति को परिपक्व बनाते हैं। जैसे कच्चा बर्तन पककर मजबूत होता है ना, वैसे ही
विचारों का संयम और नारी के प्रति दृष्टि। हाँ, ये तो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक बात है। और फिर वो हविष को नियंत्रित करने की बात करते हैं। ये क्या है? क्या ये इच्छाओं को दबाना है?
नहीं, दबाना नहीं, उसे समझना और नियंत्रित करना। गुरुदेव बहुत साफ कहते हैं कि जिसे हम अक्सर मनोकामना समझ लेते हैं, वो असल में हविष होती है। मतलब उसमें वासना, तृष्णा, अहंकार, इन सब का घालमेल होता है, और ये हमें भटकाती है। सच्ची खुशी, सच्ची शांति तब मिलती है जब हम इस हविष पर काबू पा लेते हैं, न कि उसकी अंधी दौड़ में भागते रहें। ये अपनी इच्छाओं को शुद्ध करने जैसा है एक तरह से।
तो मतलब असली बदलाव अपने सोचने के तरीके में लाना है, जीवन जीने के ढंग में। बाहरी दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, इसकी परवाह करने के बजाय अपनी अंतरात्मा की सुनना, अपने ईमान को, परमात्मा को महत्व देना।
बिल्कुल सही, सार यही है गुरुदेव का। अपनी आत्मा को देखो, परमात्मा को देखो। अगर वो राजी है तो दुनिया नाराज भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, और अगर वो नाराज है तो सारी दुनिया की तारीफ भी बेकार है। ये आत्मनिरीक्षण, ये एकांतवास, ये सब उसी अंदरूनी संतुष्टि और सही दिशा को पाने का रास्ता है।
तो इस पूरी चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि पूज्य गुरुदेव का जो एकांतवास है वो सिर्फ कहीं दूर चले जाना नहीं है, वो एक मानसिक अवस्था है। अपने अंदर उतरना, अपनी कमजोरियों को पहचानना, अपनी शक्तियों को जगाना और जीवन को एक ऊंचा लक्ष्य देना। और ये सफर शुरू होता है जीभ के अनुशासन से और जाता है विचारों और व्यवहार के संयम तक।
हाँ बिल्कुल, और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है कि आज की ये जो तेज रफ्तार वाली जिंदगी है जहां हम हमेशा कनेक्टेड हैं, बाहरी शोर इतना ज्यादा है, तो हम अपने अंदर वो मानसिक गुफा या वो आवा कैसे बनाए, रोजमर्रा की इस भाग दौड़ में वो कुछ पल कैसे निकालें कि खुद से मिल सकें, अपना मूल्यांकन कर सकें और जीवन को सही दिशा दे सकें। ये शायद आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती भी है और जरूरत भी।